कृष्णा, तो आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा प्रचार केंद्र कांचे में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा, नमामि विष्णुपुराय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जगचंद जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जगचंद जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जगचंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जगचंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जगचंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा, तो आप सबका स्वागत है और धन्यवाद है सुखदेव प्रभु और परिवार का जिन्होंने ये स्थान कृष्ण भावना अमृत के सेवाओं के लिए दिया, और दामोदर प्रभु स्वराज जी मोहन शेखर और भक्त मंडली जो यहां कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। फाल्गुन का महीना है, होली के दिन नजदीक आ रहे हैं। प्राचीन काल से होली का उत्सव तो होता ही आ रहा है, और होली के उत्सव में भी विशेषता है भक्त प्रहलाद की, भगवान नरसिंहदेव ने रक्षा की असुर हिरण्यकश्यप से। तो होली भक्त कौन भक्त, जो वैष्णव भक्त है, जिसका भगवान विष्णु के ऊपर पूर्ण विश्वास है, नारायण गोविंद गोपाल राम के ऊपर पूर्ण विश्वास है, उस भक्त की रक्षा के लिए भगवान साक्षात अवतार लेते हैं। ये होली का संदेश है। तो होली का पहले संदेश हमेशा ये समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति करने वालों की ही इस दुनिया के अंदर जय होती है, बाकी सब समय के साथ समाप्त हो जाती है। ये होली का संदेश है, ठीक है। और होली के दूसरे दिन रंग का दिन होता है, एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं। क्यों रंग लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं कि भक्त की भगवान ने रक्षा की है, तो सब भक्त बन जाएं और भक्ति के रंग में रंग जाएं। असल में भक्ति में के रंग में रंगने का उद्देश्य है कि जब प्रहलाद महाराज छोटे से बालक, उसके लिए उस वक्त का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति जिससे इंद्र भी डरता था, वरुण डरता था, चंद्र सारे देवता जिससे डरते थे, वो उसे छोटे बालक का कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो भगवान का भक्त था प्रहलाद। तो हम सबको भक्ति के भक्त में भक्ति के रंग में रंग जाना चाहिए। ये दूसरे दिन का संदेश है। लेकिन 511 साल पहले 511 साल पहले 511 सेंक्शन क्या कहते हैं सेक्शन जिस ओं क्या बोलेंगे 11 511 साल पहले इसी भक्ति की परंपरा को भक्तों की महिमा को और शुद्ध कृष्ण भक्ति को कलयुग के अंदर प्रवाहित करने के लिए प्रवाहित का मतलब नदी जैसे बहती है उसको कहते हैं प्रवाह जिसको कोई रोक नहीं सकता है कोई नदी को रोक सकता है नहीं रोक सकता है उसको बोलते हैं प्रवाह इस प्रेम भक्ति के प्रवाहित के लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण वापस इस धरती के ऊपर आए क्यों आए भगवान श्री कृष्ण कब आए थे हम जन्माष्टमी मनाते हैं जन्माष्टमी मनाते हैं ना अगस्त सितंबर में भगवान श्री कृष्ण आए थे तो कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण की हम सबको हमेशा याद रहती है क्या कर देके गए थे इस दुनिया को भगवद गीता जब भी भगवद गीता को उठाएंगे तो कृष्ण का संदेश हमारे सामने आएगा और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण संदेश क्या देके गए हैं भगवद गीता में तीन बातें तीन विशेष शिक्षाएं भगवान ने दी है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मतलब गुह्य ज्ञान मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज गुह्यतर ज्ञान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज गुह्यतम ज्ञान जैसे अंग्रेजी में गुड बेटर बेस्ट कहते हैं ना अच्छा उससे अच्छा और सबसे अच्छा तो भगवद गीता का गुह्यतम ज्ञान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान नॉलेज क्या है मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु चार चीजें कृष्ण भगवान कह के गए करो क्या करो मेरे भक्त बनो भक्त कैसा होता है बोला मेरे को नमस्कार करता है मेरी पूजा करता है और मेरे बारे में ही सुनता है मन मुझ में लगाता है भक्त की ये पहचान है तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश भगवद गीता में क्या है मेरे भक्त बनो भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोक से बैठ कर देखा तो मैंने कहा तो था भक्त बनो लेकिन भक्त लोग बनेंगे कैसे कैसा भक्त होता है क्या करता है भक्त क्या भक्त के गुण होते हैं भक्ति होगी कैसे ये तो मैंने नहीं सिखाया कहके तो आया भक्त बनो जैसे आपको कहें भक्त बन जाओ तो आप पूछेंगे कैसे भक्त बने यही पूछेंगे ना क्या करें भक्त बनने के लिए ये प्रश्न उठेगा ना तो भगवान श्री कृष्ण के मन में ये विचार आया कि मैं भक्ति के लिए कहके तो आया हूं लेकिन भक्ति कैसे की जाए ये तो सिखा के नहीं आया हूं तो फिर मेरे को दया कर करुणा कर वापस जाना चाहिए और भक्त और संसार के कलयुग के मेरे अपने संतान का मतलब क्या सन एंड डॉटर मेरे अपने चिल्ड्रेन जो मेरे बच्चे हैं उनको दुख से मुक्त करके सुख की प्राप्ति और प्रेम भक्ति देने के लिए मैं ही जाता हूं तो भगवान आए क्यों करुणा करके दया करके आउट ऑफ हिज गॉडलेस मर्सी लेकिन काय के लिए आए भक्ति देने के लिए तो भक्ति किसके पास होती है भक्त के पास होती है भगवान के पास भक्ति तो नहीं होती हाँ भगवान के पास भक्ति कहां जाए भगवान की तो भक्ति की जाती है तो भगवान को क्या पता कि भक्ति भक्त क्या करता है तो भगवान जब भक्ति देने आएंगे तो पहले तो भक्त बन के आना पड़ेगा तब हमको सिखाएंगे ना अब भगवान को भक्त बन के आना है तो भक्ति कौन करता है कैसे करता है वो लाना पड़ेगा ना साथ तो भगवान ने देखा कि कौन भक्ति करता है उसको साथ ले जाना चाहिए लेकिन भगवान जब आता है तो भक्ति भी पूरी चाहिए भगवान को 100% भक्त चाहिए 10% 30% 60% वाला भक्त नहीं चाहिए भक्ति भगवान को देनी है तो परिपूर्ण भक्ति देनी चाहिए कंप्लीट भक्ति देनी चाहिए तो भगवान ने देखा कि परिपूर्ण भक्ति किसमें है भक्ति से भरा हुआ कौन है पूरा तो भगवान श्री कृष्ण को भक्ति की स्वरूप भक्ति की मूर्ति परिपूर्ण भक्ति भक्ति की परिकाष्ठा भक्ति की निपुणता दिखी श्रीमती राधा रानी में हम हरे कृष्ण मंत्र में भगवान से सेवा मांगते हैं। सेवा मतलब भक्ति मांगते हैं। किससे मांगते हैं? हरे से मांगते हैं। हरे कौन है? राधा। हरे कृष्ण मंत्र में हम मांगते क्या है? भक्तिमयी सेवा मांगते हैं। किसकी मांगते हैं? कृष्ण की मांगते हैं। किससे मांगते हैं? राधा रानी से मांगते हैं। हरे से मांगते हैं। हरे का मतलब राधे। तो आज जब सभी मांगते ही राधा से हैं, तो राधा को ही साथ ले जाना चाहिए ना। ये कृष्ण ने मन में विचार किया और अपने आनंद के लिए जिस राधा को भगवान ने अपने ही श्री विग्रह से प्रकट किया था। राधा कैसे पैदा हुई? राधा भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट साइड बॉडी से ऐसे प्रकट हुई। राधा कोई स्त्री नहीं है, संधारण भगवान की शक्ति है जो भगवान के अपने ही शरीर से प्रकट हुई है और भगवान का चिन्मय सच्चिदानंद विग्रह है, उसी का विस्तार है। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे राधा रानी भगवान के शरीर का विस्तार है, श्री विग्रह का विस्तार है। किसके लिए है? भगवान को आनंद देने के लिए और भक्तों का पोषण करने के लिए। आह्लादिनी शक्ति करे कृष्ण रस आस्वादन, आह्लादिनी शक्ति र करे भक्तेर पोषण। ये जो राधा रानी भगवान की शक्ति है, ये क्या करती है? कृष्ण को आनंद देती है और कृष्ण के भक्तों का पालन पोषण करती है। पालन पोषण क्या करती है? नर्सिंग देम, नर्चरिंग देम। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने उस आह्लादिनी शक्ति राधा रानी को वापस अपने में मिला लिया। अपने में मिला लिया क्योंकि आना भक्त बन के है, आना भक्त का भाव लेकर है। तो कृष्ण राधा का भाव और राधा का रंग लेकर इस धरती के ऊपर प्रकट हुए। राधा भाव द्युति अंगीकार करी। राधा भाव मतलब भक्ति का भाव, प्रेम भक्ति का भाव, और राधा कांति का मतलब राधा का रंग। आए भगवान श्री कृष्ण तो क्या रंग है राधा का? गौरा। तो कृष्ण आज बन के आए गौर अंगा, गौर अंगा। अंग का मतलब उनके सारे शरीर कैसा है? गौरा है। तो गौरंगा बन के जब भगवान श्री कृष्ण आए, श्री चैतन्य महाप्रभु आए गौरंगा बनकर 511 साल पहले, 48 साल तक, 48 ईयर्स तक इस धरती के ऊपर रहे और उन्होंने एक चीज इस दुनिया को विशेष रूप से दी जो आज से पहले किसी अवतार ने नहीं दी, कृष्ण प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति। और वैसे लिखा है चैतन्य चरितामृत में, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाकर चार प्रकार के प्रेम भक्ति का इतना तो प्रचार करूंगा कि सारा जगत उठ के नाचेगा उसमें। प्रेम नाचाए प्रेम डुबाए, प्रेम में नाचेंगे और डूबेंगे। चार प्रकार का क्या संगत? भगवान का दास, भगवान का मित्र, भगवान का माता पिता और भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी। दास्य भाव भक्ति का, सखा भाव भक्ति का, वात्सल्य भाव भक्ति का और माधुर्य भाव। ये चार गौरी वैष्णव चेतना महाप्रभु चार भाव लाए। जो शांत भाव है उसको इंक्लूड नहीं किया। चार भाव, चार भाव नहीं, चार भाव लेकर महाप्रभु आए। लेकिन ये शिक्षा किसको दी? अपने बहुत निकट के परिकर, परिकर का मतलब एसोसिएट, उसको इनको शिक्षा दी। तो आज सुबह हम एक श्लोक पढ़ रहे थे, उसी श्लोक को सुबह अंग्रेजी में पढ़े। ललिता चरण माता जी आई नहीं सुबह, इसलिए वही श्लोक को आज दोबारा यहाँ पढ़ेंगे और सत्संग करेंगे उसके ऊपर। माता अंग्रेजी में क्लास होती है, आके बैठती है, कहती है थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोल दिया करो, नहीं तो फिर भी आके बैठती बैठती रोज है। केक भगवान के लिए बनाना, तो हम आपके लिए कथा का केक बनाते हैं। हम आजकल मंदिर के अंदर सुबह सत्संग कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की रूप गोस्वामी को शिक्षाएं। रूप गोस्वामी बंगाल की सरकार के मंत्री थे, बहुत कुलीन सारस्वत ब्राह्मण थे, लेकिन मोहम्मदियन मुस्लिम गवर्नमेंट में सर्विस करने के कारण अपने आप को नीच मानते थे। उनके दो और भाई, बड़ा भाई उनका नाम सनातन गोस्वामी और छोटा भाई उसका नाम श्री वल्लभ या अनुपम है, जिसका बेटा जीव गोस्वामी है। तो ये चार परिवार के लोग चेतना महाप्रभु के अनन्य भक्त हैं। सो रूप गोस्वामी को श्री चेतन महाप्रभु ने रस आचार्य मतलब भक्ति के रस का आचार्य, भक्ति में जो रस है उसकी शिक्षा देने के लिए रूप गोस्वामी को चुना चेतन महाप्रभु ने। ही हैज चोजन। और कहां शिक्षा दी? प्रयागराज त्रिवेणी संगम, जहां गंगा और जमुना मिलते हैं और जहां सरस्वती अदृश्य रूप में आके उनसे मिलती है, इसलिए उस स्थान को कहते हैं त्रिवेणी संगम। त्रि मतलब त्रि, संगम मतलब मिलना। तो यहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तक फॉर 10 डेज रूप गोस्वामी अकेले को सामने बिठाकर और भक्ति के रस शास्त्रों की शिक्षा दी। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचे, भगवत गीता अकेले अर्जुन को श्री कृष्ण ने बैठ के सुनाई थी, एक कृष्ण एक अर्जुन बस, और भगवत गीता 18 अध्याय पूरा एक आदमी को शिक्षा दी। और आज वही भगवान श्री कृष्ण अकेले रूप गोस्वामी को बिठाकर और 10 दिन तक शिक्षा दे रहे हैं। कितना भाग्यशाली वो व्यक्ति होगा जो भगवान के सामने बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रहा है। सोचना चाहिए, हम कहते हैं कम लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग कैसे करें? अरे भाई एक भी आए तो सत्संग करना चाहिए, ये सिखा रहे हैं महाप्रभु। एक भी सीख जाए तो बहुत बड़ी बात। हम ज्यादा आदमी को सत्संग क्यों सुनाना चाहते हैं? क्योंकि हम अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं कि बहुत से लोग कहेंगे बड़ा अच्छा सत्संग किया। लेकिन एक भी आदमी भक्त बन जाए रूपक गोस्वामी जैसा, तो आज तक उनकी शिक्षाओं को पूरी दुनिया पढ़ रही है। ये बहुत बड़ा, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं आपका सत्संग तो आप नेम से रोज कीजिए, कोई नहीं आए तो दीवारें सुनेंगी। बहुत सारे और जीव हैं जो दिखते नहीं है लेकिन सुनते हैं। अगर आप ठीक सत्संग करोगे, प्रभुपाद जी सत्संग कर रहे थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के भक्ति विद्वान मनोर में, तो प्रभुपाद ने कहा आप ऐसे करो, दो आसन रख दो अल्टर के अंदर। प्रभुपाद क्यों अल्टर क्यों रखें, मैं आसन क्यों रखें बड़े? बोला यहां नारद आदि लोग सत्संग सुनने आते, उनके लिए आसन रखो। आज भी आसन मंदिर के अंदर रखे हुए हैं ऊपर, कि सत्संग जब होता है तो नारद और सनक आदि ऋषि सत्संग सुनने आते हैं भागवत का। ये प्रभुपाद ने कहा और आसन रखवाए कि आपको नहीं दिखते हैं लेकिन आते हैं। तो इससे पहली एक शिक्षा इससे ये मिलनी चाहिए, हमें रोज भागवत को निरंतर सत्संग करना चाहिए। कोई आए ना आए उसे हमें कुछ नहीं लेना, एक आदमी आए तो बहुत है। एक आदमी के ऊपर 10 दिन भगवान साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ने बैठकर उसको शिक्षा दी है। और उस शिक्षा में क्या बताया है, शुरू ऐसे करते हैं कि इस ब्रह्मांड में, आप इसको पहले ऐसे समझें, मॉरिशस में तो 1.2 मिलियन लोग हैं, ठीक है, लेकिन फिर हम देखेंगे तो भारत में तो ट्रिलियन ट्रिलियंस के हिसाब से लोग हैं, चाइना में तो उससे भी ज्यादा है, तो फिर पूरे दुनिया में तो और ज्यादा है। तो इसका मतलब डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल, लेकिन ये तो एक दुनिया हो गई। ऐसे और कई और ब्रह्मांड हैं, वहां भी बहुत से और जीव हैं। और इस प्रकार से 84,000 डिफरेंट स्पीसीज, 84,00,000 प्रकार की जूनियां हैं। उसमें दो प्रकार जीवों का है, एक चलते हैं एक नहीं चलते हैं। जैसे नहीं चलते हैं पेड़ आदि, और चलते हैं वो या जल में है या धरती पे है या आकाश में है। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, जल में मछलियां रहती हैं मगरमच्छ, और धरती के ऊपर पशु पक्षी और मां, तो जो चलते हैं उसमें सबसे अल्प, बहुत कम से कम कौन है? मानव। मानव सबसे कम है। उस मानव में भी वेद शास्त्र को मानने वाले बहुत कम हैं। मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, शबर नाम लिखे हैं। ऐसे तो बहुत हैं, जैसे अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले आदमी, देखने में आदमी आते हैं लेकिन काम पशु जैसे, कोई मर्यादा नहीं है। तो पहले तो मानव कम है, और मानव में भी सभ्य मानव कल्चर आर्यन बहुत कम है, और फिर आर्यन में भी जबान से कहने वाले के हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ऐसे आधे से ज्यादा तो ऐसे केवल जबान से मानते हैं। महापुरुष ने कहा अर्ध एक लिप सर्विस करते हैं, जैसे हम उस दिन कह रहे थे कथा में, बहुत से लोग कहते हैं जब हम ब्राह्मण हैं, दिखाएंगे कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन शराब पियेंगे उसमें शर्म नहीं आएगी, शराब पीने में शर्म नहीं आएगी, और ये भी दिखाएंगे कि हम ब्राह्मण हैं, देखो देखो। तो ऐसे बहुत हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन केवल जबान से कहते हैं लेकिन करते धर्म के लिए कुछ भी नहीं। जो बाकी धर्म को मानने वाले ठीक शास्त्र को मानते हैं, वो भी वेदों से सिर्फ कर्मकांड को मानते हैं, वो यज्ञ आदि पूजा आदि करते हैं। आ गया काली पूजा के दिन आए दुर्गा के, तो मंदिर में जाएंगे भागते हुए, थोड़ा सा फल फल लेकर घूम के, और बड़ी भीड़ से आ गए शिवरात्रि तो पैदल चले गए, और जो गंबासा में, लेकिन वापस आके वही करते हैं जो पहले कर रहे थे। क्यों करते हैं ये सब उनसे पूछो, क्यों करते हैं? आप कभी किसी मंदिर में जाने वाले से पूछो कि भाई तुम मंदिर में क्यों जाते हो, क्या जवाब मिलेगा? बहुत दुखी हैं, जाते हैं भगवान हमारे दुख दूर करे, यही ना? या क्या कहेंगे, कुछ कमी है, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दे, घर बन जाए, हमारा मोटर आ जाए, नंदा नौकरी मिल जाए, बच्चा पढ़ जाए, इसलिए जाते हैं ना? या कुछ लोग डर के मारे जाते हैं, नहीं जाएंगे तो हमारे को दंड जमराज देगा, इसलिए थोड़ा सा जाके होके आ जाते हैं। लेकिन कौन जाता है भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए? कोई भी नहीं जाता। हमने उस दिन कहा था सबको कि हम आपको एक टेस्ट देते हैं, आप घर में करो जाकर, कि कितने लोग धर्म को मानने वाले हैं। अब टेस्ट करो। धर्म को मानने वाले का मतलब है वेदों में बताए हुए नियमों को पालन करने वाले, और वेदों के नियम ये हैं कि हर बेटे को माता पिता की सेवा करनी है, सुबह शाम उसके चरण छू के जाना है। ये वेदों का एक शिक्षा है, मातृ देवो भव। अब आप अपने घर में जाके देखो कि आपने कितने बच्चे आपके चरण छूते हैं, कितने आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, इससे पता लगेगा कि कितने लोग वेदों को मानने वाले हैं। आप बताओ कितने घरों में ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता के चरण छू के जाते हैं। अपन यहां बैठे हैं 50-100 लोग, कोई हाथ उठा के कहे कि मेरा बच्चा पांव छू के जाता है? और भागवत में श्री भगवान श्री कृष्ण की नित्य क्रिया में यह बताया है, नित्य उठते थे पहले अपना जो भी नाह धोने के संसार की दृष्टि से करके, पूजा ध्यान भगवान करके सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, फिर अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए वसुदेव देव की, उग्रसेन और जो भी बड़े थे उनका चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेने जाते थे। रोज भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने, जब हमने ये कथा सुनी थी राधा गोविंद महाराज से हरिद्वार में 2002 में या कब, उसके बाद हमने ये नियम बनाया, जब अपने गांव जाएंगे, अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं घर से नहा धो के निकलने के बाद जाके उनके चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे। ये भगवान शिक्षा देंगे क्या, हम क्यों नहीं कर रहे? तो एक ये छोटा सा काम हमारे घरों से समाप्त हो गया। अरे माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से बड़ों के चरणों, ये तो भगवत गीता का श्लोक है, 17वें अध्याय का श्लोक है। शरीर की तपस्या क्या है? देव द्वैज गुरु प्रज्ञा पूजनम, उसमें लिखा है बड़ों का नहीं चाहते हुए भी, तपस्या का मतलब नहीं चाहते हुए भी बड़ों का सम्मान करके उनको आदर देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता है और बहू के लिए सास माता के समान है, उसका सम्मान सेवा करनी चाहिए। ये कहां चले गए सब चीजें? इसका मतलब हम नाम के तो कहते हैं सनातन धर्म के हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, लेकिन कर तो कुछ भी नहीं रहे हैं धर्म के अनुसार। भगवान रामचंद्र विश्वामित्र के साथ गए हैं लक्ष्मण के साथ, विश्वामित्र जी सायंकाल को कथा सुना के आराम करते थे और राम लक्ष्मण दोनों बैठ के चरण दबाते थे, और तब तक चरण दबाते थे जब तक गुरु जी सो न जाए और कहे कि तुम जाके आराम करो, तब तक चरण दबाते रहते थे। यहां कितने लड़के आपके आपका चरण दबाते हैं रोज, बहू को सास ने कहा मेरा सर दुख रहा है दबाओगी? पता है बहू ने क्या कहा? अभी टाइम नहीं है, गला कभी दुखे तो हमको जरूर बुलाना। तो हमको बुला लेना, हम जरूर सेवा करेंगे। तो ये मर्यादाएं हैं। देखो इस्कान के भक्तों को ये शिक्षा दी जाती है कृष्ण भावना में कि दूसरे भक्त को प्रणाम करो, चरण छूना क्या, प्रणाम करो पूरा, जो एक बार कृष्ण मंत्र जपता है उसको प्रणाम करो, आदर दो। तो भक्तों में ये प्रेम स्नेह तब बढ़ेगा जब एक दूसरे को आदर करेंगे और सम्मान देंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेगा? तो महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी, धर्म का नाम लेने वाले बहुत हैं, धर्म के ऊपर चलने वाले बहुत कम हैं। मैंने कहा भारत में गायों के पीछे एक चीज लिखी होती है, आपने कभी कभी जाओ तो पढ़ नहीं सकते हो आप, हिंदी में लिखी होती है, 100 में 99 बेईमान फिर भी भारत महान। अब समझ रहे इसका अर्थ क्या है? 100 में मीन्स आउट ऑफ 100, 99 मीन्स 99, बेईमान का मतलब डिसऑनेस्ट। 100 में 99 डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, फिर भी हमारा देश महान। इस बात इसका अर्थ यह है कि जो कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, भारतवासी का मतलब वैदिक धर्म को मानने वाले आर्य, जो कहते हैं उनमें से 99% तो कुछ भी नहीं मानते, सारे ही उल्टा चल रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं जो थोड़े बहुत चलते हैं वो भी केवल कर्म कांड करते हैं कि इस दुनिया में कुछ नाम हो जाएगा, बड़ा यज्ञ कराया, बड़ा मंदिर बना दिया, बड़ा सा पूजा प्रतिष्ठा कराई, नाम हो जाएगा, इधर भी नाम होगा और फिर भगवान स्वर्ग में सुख दे देगा। तो ये भी हो गए कर्म का काम करने, कर्मनिष्ठ हो गए। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि का मतलब 10 मिलियन 10 मिलियन 1 करोड़, 100,000 से 1,000 से 1 मिलियन इज इक्वल टू 1,000,000 है ना, 1,000,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 कोटि। ऐसे कर्म, इसका मतलब कि जितने मंदिर में जाते हैं ये घंटी बजाने वाले, उनमें से कोई एक होता है ज्ञानी श्रेष्ठ। वो ज्ञानी श्रेष्ठ क्या कहता है? संसार में कई जन्मों से हम धक्के खा के थक गए हैं, अब भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए और उसके अंदर मिलके उसमें लीन हो जाना चाहिए। ब्रह्म में लीन होने वाले ज्ञानी कहलाते हैं, वो कर्मियों में श्रेष्ठ हैं। कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त, कहते तो हैं कि हम भगवान में लीन होंगे, होता कोई एक है उस स्तर के ऊपर जिसको मुक्त कहा जाता है, संसार के बंधन से मुक्त होता है। कोटि मुक्त मध्य कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त, एक कृष्ण भक्त ऐसे 10 मिलियन लिबरेटेड पर्सन में कोई एक होता है। इसका मतलब मुक्ति के बाद कृष्ण भक्ति शुरू होती, आफ्टर मुक्ति, लिबरेशन के बाद कृष्ण भक्ति शुरू होती है। तो पहले तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि कृष्ण भक्ति के निकट में आए हैं, तो आप मिलियंस एंड ट्रिलियंस के अंदर कोई एक व्यक्ति रेयर है। और फिर महाप्रभु ने ये श्लोक कहा है, अपने ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अब जब एक ही कृष्ण भक्त बहुत सुदुर्लभ है, बहुत कम दिखने, मोस्ट रेयर है, तो फिर प्रश्न ये मानो रूप गोस्वामी पूछते हैं कि तो फिर कृष्ण भक्ति मिलेगी कैसे, कैसे आदमी कृष्ण भक्त बनेगा। हाँ, कोई आदमी आपको कहे कि ये सबसे अच्छी चीज है तो आप कहेंगे कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। हाँ, ये नॉर्मल ऐसे है ना, दिस इज द बेस्ट थिंग, हाउ टू गेट, वेयर टू गेट। तो एकदम ये पूछेगा आदमी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तब महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते, भ्रमिते का मतलब दे आर वांडरिंग, वांडरिंग ब्रह्मांड भ्रमिते को ऐसे समझिए, आप ऐसे इसको समझिए। आप मॉरिशस के अंदर पहले देखिए, रोज हम एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं, एक गली से दूसरी गली में जा रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो इसको भ्रमण बोलेंगे ना। कुछ लोग जो है यहां फ्लैट में रहते हैं, फिर यहां से चले जाते हैं, चाहे वो केतरबोन में रहते हैं, ठीक है, और कुछ थोड़ा धन और ज्यादा होगा, बोलो हम मॉरिशस ठीक नहीं है, चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, तो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नहीं, हम अमेरिका जाते हैं, तो दूसरे देश में गए कि नहीं गए। अब जैसे हम एक गांव से दूसरे में जाते हैं, एक देश से दूसरे में जाते हैं, ऐसे एक लोक से भी दूसरे लोक में जाते हैं, एक लोक से भी दूसरे लोक में जाते हैं। तो जैसे यहां हम रोज सुबह से शाम तक भ्रमण कर रहे हैं और 50-60 साल जिंदगी के ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे कई जन्मों से कई लोगों में ऐसे घूम रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई भाग्यवान जीव, मोस्ट फॉर्चुनेट कोई एक होता है। कौन भाग्यवान होता है? जिसके ऊपर कृष्ण और गुरु की कृपा होती है। प्रसाद का मतलब कृपा, गुरु कृष्ण प्रसादे, प्रसादे मतलब कृपा। तो क्या देते हैं वो? भक्ति लता बीज। भक्ति कहां से मिलती है? मतलब भक्ति गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलती है। प्रभुपाद ने लिखा है कि कोई भाग्यवान कैसे बन सकता है? केवल भगवान के भक्तों के संग से। भक्ति कैसे मिलेगी? भगवान के भक्तों के संग से। भक्तों का संग कब मिलता है? जब कृष्ण की कृपा होती है। जब भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर कृपा है, इसका क्या प्रमाण है? व्हाट इज द प्रूफ दैट कृष्णा हैज बेस्टोड हिज मर्सी ऑन यू? कृष्ण ने हमारे ऊपर कृपा की है, इसका प्रमाण क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? इसका प्रूफ यह है कि हमको भक्तों का संग मिला है। इफ यू हैव एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज देन इट इज द मर्सी ऑफ कृष्ण। भगवान के भक्तों का संग मिला है तो यह कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कहीं एक सनातन गोस्वामी की शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्वतः अपने आप जीव कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता, ऑन हिज ओन ही कैन नॉट डू डिवोशनल सर्विस। अपने इसलिए कृष्ण ने कृपा करके वेद शास्त्र दिया, गुरु दिया और स्वयं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे। ये तीन चीजें, गुरु, शास्त्र और भगवान परमात्मा के रूप में, ये तीनों हमारे को कृष्ण भक्ति में जगाने के लिए है, भगवान ने भेजे हैं। कृष्ण कैसे आए? व्यास के रूप में आके सब शास्त्र दिया, गुरु के रूप में आकर हमको शिक्षा देते हैं और परमात्मा के रूप में गुरु के पास भेजते हैं। अब हमको क्या करना चाहिए? हमको भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपके चरणों की सेवा करने चाहते हैं, हम आपका भक्त बनने चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं। तो भगवान हमारे दिल में बैठे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, जब हमारी ये प्रार्थना सुनेंगे तो हमारे को किसी साधु वैष्णव गुरु के पास भेज देंगे। ये भगवान हमारा अरेंजमेंट करेंगे, ढूंढने से गुरु नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो हमको वहीं भेज देंगे। अब मैं कुछ लाइनें प्रभुपाद के जो भावार्थ है उससे पढ़ता हूं और भावार्थ में प्रभुपाद जी ने नारद का उदाहरण दिया है कि किसी को कृपा कैसे मिलती है, जैसे नारद को मिली। छोटा सा बच्चा था, 5 साल का बच्चा था, कुछ साधु आए थे, उनकी सेवा की, साधु प्रसन्न हो गए और साधु ने उसको प्रेम भक्ति दे दी। तो हम सुबह इसके ऊपर चर्चा करते कर रहे थे, हमारे मन में ये भाव आया कि नारद का ही उदाहरण प्रभुपाद ने क्यों दिया है। बच्चे का उदाहरण इसलिए दिया है कि जब वैष्णव की सेवा करनी हो, साधु की सेवा करनी हो, तो बच्चे के मन से करनी चाहिए। बच्चा जब किसी की सेवा करता है तो कुछ उसके मन में लेने की इच्छा भी नहीं होती है, कुछ बेईमानी भी नहीं होती है, कुछ राजनीति भी नहीं होती है सेवा में। वो बच्चा का भाव इनोसेंट भाव से सेवा करता है, केवल सेवा के लिए ही सेवा करता है। बच्चे की सेवा का अर्थ ही है। बच्चे नारद 5 साल का बच्चा, उसका उदाहरण क्यों दिया है? क्यों नहीं तो हमने तो कहा कि कोई गुरुजन साधु आते हैं तो सब भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, और गुरुजन गए तो 12 महीने दिखाई नहीं देते। तो इसका मतलब उनका जो आने का उद्देश्य है वो गुरु को दिखाने आते हैं, भक्ति करने को नहीं आते। भाव बच्चे का भाव जो है जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जाना जरूरी है। तो बच्चे का मतलब है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब बहुत सरलता से मतलब विथ वेरी सिंपल हार्टेड। भक्ति इज वेरी सिंपल फॉर सिंपल, बहुत आसानी से की जा सकती है, जस्ट लाइक ए चाइल्ड। और फिर प्रभुपाद जी कुछ लाइनें लिखते हैं, वो मैं पढ़ूंगा और फिर सत्संग को विराम देंगे। ये 2-3 लाइनें पढ़ सुन लीजिए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, फॉलोइंग इन दी फुट स्टेप ऑफ नारद मुनि, जैसे नारद के ऊपर कृपा हुई, भाग्यशाली बना साधुओं की कृपा से, उस नारद जी की कृपा से उनके चरण चिन्हों के ऊपर चलते हुए, दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज रेंडरिंग सर्विस टू ह्यूमैनिटी बाय गिविंग एवरीवन ए चांस टू कम इन कॉन्टेक्ट विद कृष्ण। ये जो स्कान कृष्ण भावना अमृत संघ है, ये सबका भाग्य बनाने के लिए है, सबको फॉर्चुनेट बनाने के लिए है, सबको कृष्ण के निकट लाने के लिए है, और ये नारद की शिक्षाओं के अंतर्गत है। इफ वन इज फॉर्चुनेट, अगर कोई भाग्यशाली है, ही बिकम्स इंटीमेटली रिलेटेड विथ दिस मूवमेंट, तो वो घनिष्ठ रूप से इस संस्था के साथ अपने आप को जोर देता है अथवा संस्था का ही बन जाता है। देन बाय द ग्रेस ऑफ कृष्ण वंस लाइफ बिकम्स सक्सेसफुल। जब वो कृष्ण भावना इस स्कान के साथ जुड़ जाता है तो कृष्ण की कृपा से उसका जीवन सफल हो जाता है। एवरी वन हैज डायमंड कृष्ण भक्ति। अब एक बात बहुत बड़ी इसमें यह है कि भक्तों के संग में आने से आपको भक्ति मिलती है, तो भक्त ये ना समझे कि मैंने तुमको भक्ति दी है और तुम मेरे पीछे ही चलो। भक्ति तो सबके हृदय में कृष्ण ने पहले से दे के रखी है। कृष्ण भक्ति सबके दिल में डारमंट रूप में, बीज के रूप में पड़ी है। एवरी वन हैज डारमंट कृष्ण भक्ति, लव फॉर कृष्ण। अब दूसरी लाइन सुन लीजिए, एंड इन द एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज। प्रभुपाद ने वर्ड लिखा है गुड डिवोटीज, इसका मतलब कुछ भक्त होते हैं और कुछ अच्छे भक्त होते हैं। तो अच्छा भक्त कौन है और भक्त कौन है? भक्त वो है जो अपनी भक्ति करता है, और अच्छा भक्त वो है, यहां लिखा है अच्छा भक्त कौन है, उसकी लाइन में पढ़ता हूं, वन हु गिव्स गुड इंस्ट्रक्शन एंड चैंटिंग हरे कृष्णा ही इज ए गुड डिवोटी। मैं पूरी लाइन पढ़ जाता हूं, इन द एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज, अच्छे भक्तों के संग में, दैट लव इज रिवील्ड। कृष्ण भक्ति सबके दिल में पड़ी, आप सबके हृदय में कृष्ण के प्रेम पड़ा है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है। बाहर कैसे निकलेगा, रिवील कैसे करेगा? जब अच्छे भक्तों से कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे, कथा शास्त्र सुनेंगे। और फिर श्लोक प्रभुपाद जी ने लिखा है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्यक बुनाही शरणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। डायमंड डिवोशन सर्विस टू कृष्ण इज गिवन एवरीवन। ये लिखने का अर्थ ये है चैतन्य महाप्रभु का, किसी को भी प्राउड नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को भक्ति दे रहा हूं। ये तो पहले ही है, कृष्ण ने दी है। तो हमारे को हम्बल करने के लिए महाप्रभु की ये शिक्षा है। इसलिए प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि मैं इसको बनाया, कहा का ये तो हमारे गुरुदेव की कृपा है, इसका तो फाउंडर चैतन्य महाप्रभु है, इसकी तो ओरिजिनल कृष्ण ने की है। कभी नहीं कहा मैंने बनाया। इफ आई हैव एनी क्रेडिट दैट ओनली सिंपली आई एम ट्राइंग टू सर्व द आर्डर माय स्पिरिचुअल मास्टर, बस। तो ये अब क्या कहते हैं, सिंपली बाय एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, हियरिंग देयर गुड इंस्ट्रक्शन, इट मीन्स गुड डिवोटीज वन हु गिव्स गुड इंस्ट्रक्शन, एंड चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, वन अवेकन्स हिज डॉर्मेंट लव फॉर कृष्ण, इन दिस वे वन अक्वायर्स द सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो संदेश ये है महाप्रभु का कि भक्तों के संग से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके कृष्ण भावना अमृत में अपने कृष्ण प्रेम को जो आपके दिल में कई जन्मों से पड़ा है उसको प्रकट कर लो, उसको प्रकट कर लो। अब एक प्रश्न ये है कि भक्ति की लता का बीज क्या है, जो गुरु देता है वो भक्ति लता का बीज क्या है, भक्ति की लता का बीज क्या है जो गुरु देता है, और उस फिर बीज का पालन पोषण शिष्य को करना पड़ता है, तब वो लता बड़ी होगी और उसका फल होगा कृष्ण प्रेम। तो भक्ति की लता का बीज क्या है, हरे कृष्ण मंत्र भक्ति की लता का बीज नहीं है, ये तो भगवान का साक्षात स्वरूप है, नाम रूप है। अब एक लाइन में पढ़ लेता हूं कि भक्ति की लता का बीज क्या है। द भक्ति लता बीज इज रिसीव फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर बाय द ग्रेस ऑफ कृष्ण। व्हाट इज दैट, मेथड्स rules and regulation by which one is perfectly trained in devotional service constitute bhakti lata bij or seed of the devotional service. Methods, rules and regulation by which one is trained, इसका मतलब जो साधन भक्ति है, साधन भक्ति वो भक्ति का बीज है। Rules, regulation, method ये गुरु देता है। हरे कृष्ण नाम तो कोई भी कहीं भी जप सकता है, लेकिन वो सिर्फ जैसे एबीसीडी में हरे के आ ए के आई आर एस एच एन ए होगा, वो कृष्ण साक्षात नहीं होगा, वो तभी होगा जब साधु के संग से नियमों से किया जाएगा, नहीं तो वो नाम सिर्फ ऐसे अल्फाबेट का नाम हो जाएगा। सो दे रूल्स रेगुलेशन, तो क्या शिक्षा गुरु देते हैं, मंत्र नहीं देते हैं, रूल्स रेगे। ये जो लोगों की मान्यता है कान में मेरे को गुरुजी ने मंत्र दे दिया आप मैं मुक्त हो गया, गुरु जाने गुरु का काम जाने, नहीं नहीं, नियम पालन करने हैं, भक्ति के नियम हैं। तो भक्ति का बीज क्या है इसके ऊपर कभी बैठ के चर्चा करनी चाहिए। क्या हमारे बीज उसको हमने संभाल के रखा है, और फिर आगे कहेंगे इस भक्ति के बीज को छोटी सी पतली सी एक वाइन है, लता है, अगर वैष्णव अपराध किया तो समझो कि एक मतवाला हाथी आपके बगीचे में आया और भक्ति की लता को उखाड़ के फेंक के चला जाएगा। भक्ति की लता का बीज तो गुरु ने दिया, लेकिन हमने वैष्णव अपराध किया तो हमारी लता का बीज ही उड़ गया, इसलिए हमारी भक्ति की लता बढ़ नहीं रही। इसलिए इन शिक्षाओं से चैतन्य महाप्रभु एक बात कहते हैं, भक्तों के संग में रहो, भक्तों के संग में रहो। भक्तों के संग में क्या मिलेगा, भक्ति के नेम, भगवान की कथा, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, और जहां भगवान प्रकट होते हैं वो मथुरा है। भगवान कहां प्रकट होते हैं, जहां भगवान का कीर्तन होता है। इसलिए पांच चीजें भक्ति के लिए, भक्ति के नियमों के अंतर्गत 64 चीजें हैं, देयर आर 64 आइटम्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर भक्ति, आउट ऑफ दैट पांच महाप्रभु ने मुख्य बताए हैं। सो भक्ति के नियम पांच कौन से हैं, भक्तों का संग, भागवत का श्रवण, भगवान के श्री विग्रह की श्रद्धा के साथ सेवा करना, नाम का कीर्तन, चार, पांचवा मथुरावास, इन सब में मुख्य है भक्तों का संग। भक्त का संग करोगे तो भक्त क्या करेगा, भक्त हरि कीर्तन करेगा, भक्त भागवत की कथा करेगा, भक्त भगवान के मंदिर का दर्शन कराएगा, और भक्त जहां भगवान का नाम लेगा वहां अपने आप मथुरा बन जाएगा। तो भक्ति के नियम क्या है, महाप्रभु ने बहुत से नियमों में ये पांच सिलेक्ट किए, तो ये पांच कैसे हम पालन करते हैं, ये इस गौर पूर्णिमा में हमको थोड़ा अपना बैठकर एनालिसिस करना चाहिए। ये हर एक बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द ईयर वो अपना एनालिसिस करता है कि मैंने क्या कमाया इस साल, कितना आया कितना गया, क्या मेरा प्रॉफिट हुआ, ऐसे सोचता है। ऐसे इस गौर पूर्णिमा में बैठ के आप एनालिसिस करो अपना कि हम कितने भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, और अब क्या बढ़ाना चाहिए, कैसे हम भक्तों के लिए का संग करें, कैसे हम भक्तों को प्रेम से सेवा करने के लिए, भक्तों के माध्यम से ही भक्ति मिलेगी तो भक्तों का संग करें, ये बैठ के इस गौर पूर्णिमा में थोड़ा चिंतन करना चाहिए। और अपने लिए ही दो चार लाइनें लिख लो कि मेरे को भक्ति बढ़ाने के लिए इस साल ये करना है, आने वाले साल में रोज मैं भागवत पढ़ूंगा, आने वाले साल में मैं ऐसे जप को बढ़ाऊंगा। तो ऐसा कुछ हर साल करना चाहिए, संदकी बहुत कम है, भोग तो कई जन्मों में हम कर चुके हैं, कई जोनियों में कर चुके हैं, जो जिस जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि हमने पहले बहुत किया है, हमें आदत पड़ी हुई है। जो जिस जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं ये पहले कई जन्मों में हमने किया है, इसलिए बहुत जिसको उड़ने का शौक है, पहले वो कभी बर्ड बना है, बहुत उड़ के चुका है, अभी भी जहाज से नीचे ही नहीं उतरना चाहता है। उसके मन में ऊपर चढ़ के घूमता रहेगा हवाई जहाज में, अरे बहुत जन्मों में घूम लिया, अब छोड़ दो उसको। कहने का अर्थ है कि सारे दुनिया के जितने भोग है कई जन्मों में हम कर चुके हैं, और जिसमें अभी हमारा मन ज्यादा है वो हमने सबसे ज्यादा किया है। अब प्रभुपाद ने एक भक्त का, बहुत जन्म तुमने अपना ऐश किया, यू एंजॉयड योर सेल्फ इन इन्यूमरेबल लाइफ, कांट यू गिव ओनली फ्यू ईयर्स ऑफ दिस लाइफ फॉर कृष्ण। आप इस जीवन के 10 साल 15 साल कृष्ण को नहीं दे सकते हो, यू गिव इट एंड यू सी द रिजल्ट, आप देखो और फिर इसका फल देख लो। बहुत चीजों दुनिया की चीजों को अपने जीवन दिया है, कई बार दिया है, एक बार भगवान को भी जीवन दे के देखो। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, नहीं तो हमको पहुंचना पड़ेगा दूसरे स्थान के ऊपर। ब्रह्मांड भ्रमित है, इस श्लोक को कभी अच्छी तरह से फिर पढ़ के समझना चाहिए, ये मुख्य श्लोक है चैतन्य चरितमृत का, मध्य लीला के 19वें अध्याय का श्लोक है। इसका कवर कहाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।